पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अपने आत्मा चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में सिर्फ इतना कहा है कि इस दर्वमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। दर्वमय यज्ञ कौन सी होती है, जो धन से संपन्न होती है। यज्ञ जैसे भंडारा है, कहीं पर कोई मंदिर बनवा दिया जिसको धर्म मानते हैं, कहीं कंबल बांट दिए, इस तरह के कोई धर्मशाला बनवा दी। तो कहने का भाव यह है कि पहले तू ज्ञान समझ, उस तत्व ज्ञान को ना समझकर अंधाधुंध वैसे ही कोई दान करने धर्म करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को समझ, उसके बाद फिर उस तत्व ज्ञान के आधार से तू फिर वो धर्म कर। ऐसे आंख मीच कर वैसे अंधाधुंध धर्म करने से कोई लाभ नहीं होता। इसका यह भाव देखिएगा, चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर हम अब 33 पढ़ेंगे। इसका आगे वर्णन है। हे परंतम अर्जुन, दर्वमय यज्ञ की अपेक्षा, यानी वैसे ही आंखें बंद करके कितना दादू धन से व्यय करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी पहले तत्व ज्ञान समझ और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। बे मतलब के डले डोने उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी पूरे संत को खोजो, तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर वो दान करो, तब संपूर्ण लाभ होगा। अब देखना, अब हम आगे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 पर। 33 हमने पढ़ लिया, अब ये जो बताया तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो तत्व ज्ञान है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो कहा गया है विस्तार से, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर ये हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है और उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोला गया ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता तथा श्री पवित्र चारों वेदों से भिन्न है। उसने अपने मुख कमल से बोला है। अब ये बता दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो गीता ज्ञान दाता फ्री हो गया, और ये भी सिद्ध कर दिया कि मुझे पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इससे सिद्ध ये हो गया कि श्रीमद् भगवद गीता इनकम्प्लीट और पवित्र चारों वेद इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है, पांचवा वेद है, और वो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला होता है। वो सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी है, उसको कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर वाणी, वो पांचवा वेद है। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, उसको कैसे पहचाने कि वो कौन है तत्वदर्शी संत? तो इसी पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में ये भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है। आपको दिखाते हैं 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ये है पंथ दशा अध्याय अथ पंथ दसो अध्याय। इसमें क्या कहा कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अवस्थ अश्वथम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अध शाखम नीचे को शाखा वाला, ये अश्वथम यानी पीपल का एक अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी उसके पत्ते आदि भाग हैं, विभाग हैं, छंद हैं, उसके पोर्स पार्ट हैं, और यह तम वेद उसको जो जानता है उन सभी विभागों को, सह वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इन्हीं की भाषा में ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यहां लिखना चाहिए था इन्होंने ऊपर को जड़ वाले। ऊपर को जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा है, समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। पहले हम इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हैं, ये बहुत आसानी से आपका समझ में आओगा। पुण्यात्माओं, ये इस मनुष्य जीवन से काम यही करण का था जिसको हमने पेंडिंग छोड़ रखा था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लिया था, जबकि ये तो वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। हमें सबसे पहले यही हमारा जन्म से ही बच्चे का उद्देश्य भक्ति और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आने वाले समय में परमात्मा उसके साथ रहेगा, ऐसी ऐसी व्यवस्था कर देगा विश्व में, आप सोच नहीं सकते। यदि सत साधना पूरा विश्व इस तरह करने लग गया तो या दौड़ मिट जाएगी, हाहाकार मिट जाएगी, और परमात्मा जो लाभ दे उसका तो कोई कहना है नहीं। इसलिए भगवान की खोज में कोई गुफाओं में, कोई पहाड़ों पर, कोई अमरनाथ पर बेचारे भटक रहे हैं, ऐसे ऐसे डेंजरस स्थानों पर जाते हैं जहां पर एक बार पैर फिसल जाए तो पाव भी नहीं पड़े, आदमी खोजे तो ना पावे, और फिर भी जाते हैं हम। तो देखिएगा ये संसार रूपी वृक्ष, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निर्णायक ज्ञान इससे समझना होगा। अब यहां क्या बताया कि ऊपर को जड़, ये तो है पूर्ण परमात्मा, ये तो परम अक्षर ब्रह्म है, और ये नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, बस गीता ज्ञान दाता ने इस श्रीमद् भगवद गीता में केवल इतना हिंट दिया है। देखिए ये 15वां अध्याय और इसका प्रथम श्लोक कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, बस इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत कर, सारा ही गलत कर दिया। ये लिखना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, ये लिखना था ऊर्ध्व माने ऊपर, आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म सचिदानंद घन रूपी, ये तो मूल समझो। अध शाखम ये ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, ये नहीं, ये देखो 2 नंबर श्लोक में इन्होंने अध्याय का अर्थ, 2 अध्याय है इसमें, एक ये एक ये, इसका अर्थ कहां किया अगले प्रश्न पर। अध्याय माने नीचे, अध्याय माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, ये आप अनुवाद कर रहे हैं ऊर्ध्व ऊपर, अध्याय माने नीचे, अध्याय माने नीचे, यहां देखिए ये फिर देखिएगा। अब ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये ठीक करते हैं। यहां ऊपर लिखना था बस इतना हो, और फिर ये यहां लिखना था अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, पहले इनकी भाषा पढ़ने आसानी से समझ में आओगी। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति तत्व से जानता है, सह वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपनात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम चल रहा है। उन्होंने अपने सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारी। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आम आदमी समझ सके हमारी इसी भाषा में बोल गए कि अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो पोर्शन, वो पार्ट, हिस्सा, भाग वृक्ष का, वो वृक्ष कहलाता है, और जड़ें प्रोक्ष होती हैं, वो गुप्त होती हैं। और ये बता दिया कि जो इस सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सर्वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया था अपने सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी। अपने आत्मा, अब इसमें क्या लिखा आगे देखो, तीनों गुण रूप। अब हम फिर श्रीमद् भगवद गीता आपको दिखाते हैं। ये वही 15वां अध्याय चल रहा है, एक हमने पढ़ लिया, अब हम दो पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवर्धा, तीनों गुण, तीनों गुण रूपी बढ़ी हुई विषय पर वाला शाखा, यानी विषय भोग रूप कोपलों, देव मनुष्य और तरक आदि योनि रूपी शाखा, यदि अपने सट्टे मारेंगे इन्हें पता ही नहीं था। ऊपर को और मूल और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये शाखाएं नीचे और ऊपर, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं, ये फैली हुई है मनुष्य लोक में, कर्मों के बंधन में बांधने की ये मुख्य कारण है, बुलानी मुख्य कारण है, जड़े हैं जो नीचे और ऊपर व्याप्त है। अब देखो, हमने यहां ये देखना है कि तीनों गुण कौन है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके आगे चलेंगे, ये दिखाना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 122-23 पे है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी बोले मुने, ये मार्कंडेय जी बता रहे, हम यहां जाते अपने काम की वस्तु लेंगे। ये लिखा कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है, यही तीन देवता है और यही तीन गुण है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 को देखते हैं। 15 का श्लोक नंबर ये 2 है, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। ये ऊपर और नीचे फैली हुई है, ऊपर स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब यहां देखो तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका न आदि और न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति थी। यो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इस संसार रूपी वृक्ष का और छोर मुझे ज्ञान नहीं, और तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसकी स्थिति से मैं परिचित नहीं हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। देखना, इस संसार वृक्ष रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया यहां विचार काल में, या तेरे और मेरे गीता जी के इस डिस्कशन में विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत, और न इसकी कोई अच्छी प्रकार स्थिति है। ही है इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, जिसकी मूल यानी ऊपर को जड़ रूपी जो भगवान है वो कौन है। अब जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार, लेकिन वो जड़ तो अलग है, वो प्रोक्ष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां बताया है वो अविनाशी है, वो ऊपर के लोक है। तो ऊपर वाला जो जड़ रूपी परमात्मा का पोर्शन है, सतलोक अनखलोक अगमलोक अकहलोक, तो वो तो समझो सुदृढ़ है, वो तो अविनाशी है। अब देखना उस सुविरुद्ध मूलम, उस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, अब यहां इन्होंने लिखा है असंग शस्त्र नहीं, उस तत्व ज्ञान वैराग रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर, अर्थात उसको समझकर, तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उससे उस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात, ये देखना अध्याय नंबर 15 का, अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर हम अब 4 पढ़ाएंगे आपको, ये 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जहां जाने के बाद जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, उसी परमात्मा की परपदे माने पूजा करनी चाहिए। ये सीधी सी बात है। अब इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ पुण्यात्माओं, इससे ये सिद्ध हो गया एक तो तत्वदर्शी संत कौन है, और वो तत्व ज्ञान है क्या, उसकी पहचान क्या है, और दूसरा ये हो गया कि उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए उस अध्यात्म ज्ञान के आधार से साधना करने से उस परम पद की प्राप्ति होती है, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में बताता है 4:5-9 श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय 10 के श्लोक 2 में ये स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और ये भी स्पष्ट करा कि केवल उस परमात्मा की भक्ति करो, उस सनातन परमात्मा की, उस परम अक्षर ब्रह्म की। अपने आत्माओं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर और जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, वे उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, परिचित हैं। आठवें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा फिर किम तत् ब्रह्म, कि जो जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, इस दोनों संकटों से ही निवारण के लिए साधना रत हैं, तो ऐसा वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म, क्या वो कर्म क्या है वो मुझे बता। आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको जानने के बाद फिर साधक के और जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। इस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब देखना अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 28-29 इसमें क्या कहा है, जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वरदोष्टा, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने उससे छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। अनुवाद यहां देखेंगे इसका अगले पृष्ठ पे, जो मेरे शरण होकर, माम आश्रित का अर्थ है जो मैंने ज्ञान बताया है उसको आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तो वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था छूटने के लिए और मृत्यु, मरण मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे साधक तत्ब्रह्म, देखो तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहां पर बिल्कुल ये तीसवा तो लास्ट में कहता जो मुझे जानते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। अब यहां देखिए पैरेलल आठवें में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने ये अध्याय नंबर ये हम 8 पढ़ रहे हैं इसके तीसरे में दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। बस पुण्यात्मा यहां से हमने इतना ही लेना था, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम इसको परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, पुरुष माने प्रभु परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 16 और 17 में आते हैं पुनः। अब यहां से हमें तीन पुरुषों का ज्ञान होगा, तीन प्रभुओं का, और जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पाते रूप संसार। अब वो परम अक्षर पुरुष को ना, वो जड़ है, वो मूल है, वो शेष जो भाग है अंडरस्टूड है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का एक संक्षिप्त कोड वर्डों में ज्ञान है। तो उसके लिए बता दिया कि तत्वदर्शी संत ही इन कोड वर्डों को समझ सकता है। अब देखना गीता अध्याय नंबर 15 हम यहां 16 पाते हैं, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च सर सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह है कि इस लोक में जो सुप्रसिद्ध हम मानते हैं, द्वौ माने दो, पुरुषौ माने पुरुष हैं, दो भगवान हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और जीवात्मा सबकी अविनाशी है और सथुर शरीर ये सर्वपुरुष भी इनके अंतर्गत प्राणियों का भी नाशवान। या देखना इस संसार में नाशवान, शर्माने नाशवान, अक्षरवाने अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। इन्हें देख के मैं ज्ञान तो था ही नहीं, जहां इनका ना समझ में पुरुष लिख दे, पुरुष कौन होया, यहां पर कोई व्याकरण थोड़ी है, ये दातम ज्ञान है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब यहां बताया सत्र में मैं कि उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर, उत्तम पुरुष यानी वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है, और है कोई इन दोनों से, इन दोनों से कोई और है, सर्वपुरुष से और अक्षर पुरुष से, वो अन्य ही है, इन दोनों पुरुषों से वो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपुन आत्मा परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सर्वपुरुष कहो, सर्वपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। ये जो उत्तम पुरुष है तो अन्य ये कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है। तो हमारा जो सतलोक के अंदर जो परमात्मा है वो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17, मंत्र नंबर 17 में यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है 40वां, और अंतिम मंत्र है यजुर्वेद के उस 40वें अध्याय का 17वां मंत्र, उसमें और 15वें में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है कि मेरा ओम नाम है, इस ओम नाम का सिमरन कर, और फिर 17वें में ये कह दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपा हुआ है, जैसे जड़े नीचे छुपी हुई होती है ऐसे वो परमात्मा गुप्त है, ऊपर प्रोक्ष अपूर्ण परमात्मा, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखिएगा यजुर्वेद आपको दिखाते हैं, प्रकाश से कहें सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, महर्षि दयानंद सरस्वती करते, इसका अनुवाद किया महर्षि दयानंद ने, ये वेदों का लेखक नहीं है, मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागंज नई दिल्ली। ये है यजुर्वेद भाष्यम, ये 15वां श्लोक है, इसमें तो ये खुद कहता है ये वेद ज्ञान दाता, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर किल्बे समर कर्तुम समर, यही गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक 15 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता हूं, इस परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली है। फिर यहां देखो ये 17वां श्लोक है, इसमें क्या लिखा, हे मनुष्यो जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वह गुप्त है, अहम और मैं ब्रह्म, खम आकाश के तुल में, खम माने आकाश में, उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा एक ओम नाम ऐसा जानो बस। अब फिर देखिएगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी जानकारी दी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना जो है ये अक्षर पुरुष समझो इसका, अक्षर पुरुष, और सर्वपुरुष इसे निकली हुई डार शाखा डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार, हम आगे यहां पात रूप में है, और इसको जड़ से आहार मिलता है सबको। अपनात्माओं यहां ये अज्ञानी हमारे गुरु पूर्व के ये आपको फिर उलझा सकते हैं कि गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने आप को पुरुषोत्तम कहता है, वो क्या कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होया हुआ हूं, लोक वेद माने दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, सुना सुनाई बातें, किम वदंतियां, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, किस ब्रह्मांड का यू मालिक है, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनका ये स्वामी है, उनसे तगड़ा है, इसलिए यहाँ ये पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा है। लेकिन कहता है उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो तो कोई और है। यहाँ देखिएगा इस 15वें अध्याय का, गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर है। अब 17 तक तो हमने पढ़ लिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये तो स्पष्ट हो गया उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। और यहाँ ये कहता है 18वें श्लोक में, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब ये क्या है कि यस्मात अक्षर अतीत है अहम अक्षरात अपिच उत्तम, अतः अस्मी लोके वेदे यानी लोक वेद में दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, प्रसतवन प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये चाहे वो सथूल शरीर में है चाहे वो अविनाशी जीवात्मा रूप में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। नहीं, वास्तव में तो पुरुषोत्तम यहाँ बता दिया इस 15वें अध्याय के अब 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो इन दो पुरुषों से कोई और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार का है। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं और अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान सुनाते हैं। पुनात्मा हम पवित्र वेदों को सत मानते हैं। पहले थोड़ी सी कथा सुनाऊंगा उस परम पिता के यहाँ प्रगट होने की, फिर अपने सदग्रंथों से उसको सिद्ध करेंगे कि हु इज गॉड। हमारे पवित्र वेद वैसे तो ये मानव मात्र के लिए ही ज्ञान है, किसी धर्म विशेष व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। फिर भी वेदों को, गीता को, पुराणों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। चलो हम पहले अपने ही इस भाईचारे को समझो, बंधुओं को, इनको ही समझाएंगे, फिर पूरे विश्व को साथ लेंगे, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम उस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे हमें सब अपने से नजर आएंगे। जैसे आपको बताया कि सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी जेठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, क्योंकि सतलोक के अंदर परमात्मा का शरीर बहुत तेजो में है। एक रोम कूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, उनके एक रोम कूप की इतनी शोभा है, यानी ये करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी भी फीकी नजर आवे। यदि वो परमात्मा वह मानव शरीर में है, यदि वो परमात्मा एज इट इज यहां आ जा उसी प्रकाश युक्त शरीर में, तो हम उसको देख भी नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, फिर यहां आने का लाभ क्या हुआ। तो वो क्या करता, अपने शरीर को हल्का सरल बनाकर, हल्के तेज पुंज का बना करके हल्का करके, और फिर वो यहां हमारे को मिलते हैं। तो ऐसे वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं कि एक बालक रूप धारण करते हैं और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं, जिसके कारण उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आने वाला, उतरने वाला। अब जैसे हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान रखा कि शेष नाग की सैया पर सोया था, चलो जो भी जल के ऊपर विश्राम कर ले, उसने नारायण तक कह सके हैं। लेकिन अब उनकी सब शक्तियों से परिचित हम होंगे तब पता चलेगा नारायण कौन सा है। तो वहां वो आकर प्रगट होते हैं, तो वहां ऐसे ही प्रगट हुए। पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड सुनाएंगे, ये नीरू निम्मा कौन थे, ये परमात्मा सत्यपुरुष, ये चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका सतसुकृत नाम होता है, त्रेता में इनका नाम मुनिंद्र होता है, द्वापर में उस परमेश्वर का नाम करुणामय होता है, और कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपना यथार्थ नाम लेकर ही प्रकट होते हैं, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, अल्लाहु अकबर। अभी आपको वेदों से रूबरू भी कराएंगे, उसमें यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा तीन प्रकार के शरीर धारण करके तीन प्रकार के शरीरों में रहता है, यानी तीन प्रकार के शरीर से अपने पूरे ब्रह्मांडों की वो देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। वो कैसी स्थिति है तीन शरीर, एक प्रकार के तो मालिक सतलोक के अंदर स्थिर रहते हैं, उनके एक रोम कूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी उसकी अधिक रहती है इससे भी। तो दूसरा वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं, उनको एक निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे वो एक लीला में तरीके से बड़े होते हैं। छोटी सी आयु में ही वो विद्वानों के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं, फिर वो बड़ा होते हैं, अपनी अमृतवाणी को बोलकर सुनाते हैं, वो लिपिबद्ध कर ली जाती है, उसको सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात उसको सुख संवेद बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कहीं पर भी किसी महात्मा को आकर, संत को, अच्छी आत्मा को आकर के, और कभी भी मिल लेते हैं कोई साधु वेश बनाकर, संत का भेष बनाकर। ये तीन स्थिति उस परमात्मा की। तो ये द्वितीय स्थिति यानी शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो ये नीरू निम्मा कौन थे, ये द्वापर के अंदर एक सुदर्शन भक्त हुआ है बाल्मीक जाति में, और वो परमात्मा जब कबीर साहब करुणामय नाम से आए हुए थे वो उनका पक्का भगत था, और जिसने उन पांडवों की यज्ञ को संपूर्ण किया था उस परमात्मा के इस सत भक्ति मंत्र से जो आपको प्राप्त हो रहा है। अब परमात्मा ने उसको ये यथार्थ ज्ञान दिया। सुदर्शन जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे माता पिता आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं मानते हैं, इनको समझाने की चेष्टा करो। परमात्मा ने बहुत बार कहा लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी कि तू कहां से ले आ, विष्णु जी से ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान कहां आ गया तेरा, हम नहीं मानते। उनकी मृत्यु होगी, वो सुदर्शन जी जो थे सुपत सुदर्शन बाल्मीक वो बड़े चिंतित थे। प्रभु ने कहा बेटा आप किस बात की चिंता किए हुए हो, ये तो सबने आना और जाना है, जो सत भक्ति नहीं करेंगे उनकी ऐसी ये चक्कर बना ही रहेगा। सुदर्शन जी ने कहा कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हैं, इस मरने और जीने की चिंता दास को नहीं है, मुझे चिंता ये सता रही है कि मेरे माता पिता कितनी अच्छी आत्मा के थे और आपके ज्ञान को ना स्वीकार करके अब उनकी के दुर्गति होगी, मैं नो चिंतित हूं, मरना तो कोई बात नहीं। एक दिन भगवान ने कहा कि सुदर्शन चल तुझे सतलोक ले चलूं, कहने लगा ले चलो मालिक हम तैयार बैठा आपका दास। फिर परमेश्वर ने कहा कि कोई तेरी यहां इच्छा तो नहीं है किसी या संसार की किसी वस्तु में, तब उसने कहा परमात्मा और मेरी कोई इच्छा नहीं, एक इच्छा समझो और चाहे मेरी कमजोरी समझो, आप तो अंतर्यामी हैं कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे ये प्रभु, उन्होंने भक्ति नहीं करी, अब वो कितना कष्ट उठा रहे होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि परमात्मा उनको किसी जन्म में अपनी शरण में ले लेना, उनका कल्याण करना। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सोचा कि अब देख इतना ज्ञान दे दिया और फिर भी इतना प्रेशर इसके ऊपर इस अज्ञान का। फिर मालिक ने सोचा कि एक मुश्किल से एक भगत तैयार हुआ है और ये और रह जाएगा इस माँ बाप के चक्कर में। तो परमात्मा ने कहा बेटा तू चिंता ना करे, तेरे माता पिता को मैं अवश्य शरण बनूंगा और उसको पार कर दूंगा। तब वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, अब मैं निश्चिंत हो गया भगवान कि अच्छा चाली तू अब मर ले सतलोक में चल। अब उसको सतलोक भेजा। तो कहने का भाव ये है या भी कमजोरी हमारी, अंत में जब तक हमारा हृदय यहां से कंप्लीटली नहीं हट जाएगा तो हम फिर यही आ जाएंगे। लेकिन जो साधना आप कर रहे हो ये अनमोल रत्न है, ये आपको यहाँ वापस मिल जाएगा। फिर इसका फायदा क्या हुआ, स्वर्ग में चले जाओगे, वहां देवता बन जाओगे, फिर मृत्यु होगी, फिर यहाँ 84 लाख में फिर भटकोगे। अब ये सुदर्शन का ये भी कमजोरी थी, वीकनेस थी उसकी, वो भी यही रखने की, काल के जाल में फंसाए रखने की। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति कमजोर सा था, उसके अस्थि पंजर सा दिखा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा डॉक्टर जी मैं उठता हूं ना तो मुझे चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है, कमजोरी है। फिर कहा कि मेरी पिंडलियों में दर्द रहता है, डॉक्टर ने कहा कमजोरी है। मेरे सिर में दर्द हो जाता है, डॉक्टर ने कहा बाबा कमजोरी है। तो वो बाबा जो है नाराज हो गया और कहने लगा तो डॉक्टर है गम चक्कर, एक के पास जाना है क्या, कमजोरी है कमजोरी है, कुछ और भी कहेगा। तो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे, तो यह भी कमजोरी ही थी उसकी, सुदर्शन जी की जो न्यू कह था अक मेरी क्या है, इच्छा नहीं है भगवान किसी चीज में, इच्छा नहीं है, बस मेरे माता पिता की याद आवे है कि वो कितना दुखी हो रहे होंगे। यह भी कमजोरी ये थी जो यहां फंसा देती, उसको माता पिता के पास पटक दो काल उसको ठा के, जहां आशा तहां बासा हुई। तो पुण्यात्माओं अगले जन्म में वो सुदर्शन जी के माता पिता ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का योग हो गया, तो परमात्मा उनको मिले, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। 3-4 वर्ष के होके अंतर ध्यान हो गए, वापस फिर नहीं आए। परमात्मा ने कहा था तुम नाम ले लो, 3 वर्ष का बालक थे, और उस सुदर्शन की माता पिता वाली आत्मा से कहा कि तुम उपदेश ले लो, और वो नौके हम ये हमारे पास रहे और हमने नौके नाम ले लो, मैंने गुरु बना लो, देख बेइज्जती करे हमारी, परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। वो सारी जीवन रो रो कर काटे न, वो जीवन बहुत बुरी तरह रोते रहे, उनकी तरफ बना दी, ये सचमुच भगवान थे, हमने मानी नहीं उनकी बात। अगले जन्म में वो फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो गया, और वो भगवान शिव के उपासक थे, गौरी शंकर सरस्वती उनका नाम था। तो गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था, इनका दोनों का फिर योग हो गया पति पत्नी के रूप में। गौरी शंकर जो है ये भगवान शिव के पुजारी थे और बहुत ही नेक आत्मा थे, निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे अपनी रोजी रोटी के लिए, और कथा में जो भी कोई दान दक्षिणा आ जाती थी उसी से निर्वाह चल रहा था, और शेष जो बच जाता था भोजन से वो भंडारा कर देते थे, संग्रह नहीं करते थे। अब क्या हुआ, अन्य जो दूसरे ब्राह्मण थे वो रोजी रोटी के लिए कथाएं किया करते थे, वहां लोगों ने जाना कम कर दिया, गौरी शंकर के पास उनका समूह ज्यादा हो गया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों को, ये काशी शहर में जन्मे थे, तो मुसलमानों ने सोचा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसके साथ ये ब्राह्मण है नहीं, और उन गुरुओं के साथ ही जनता होती थी, जो वो कहते थे वही कर देते थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती बलपूर्वक अपना जूठा पानी उनके कपड़ों पर छिड़क दिया, उस गौरी शंकर सरस्वती के कपड़ों पर गर्भ में उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती, और कह दिया ये मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए। अब वो जो विरोधी ग्रुप था ब्राह्मणों का, उन्होंने सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं, वहां कोई नहीं जाएगा, उसको अधिकार नहीं रहा हमारे पुराणों और ग्रंथों के प्रचार करने का, गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब वो विवश हो गए, निर्वाह की समस्या आ गई, तो उनका नाम रख दिया, एक का गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लग गए, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लग गए। इस प्रकार नीरू और नीमा नाम से वो दोनों प्रसिद्ध हुए। नी संतान थे, उनका संतान नहीं थी, आयु लगभग 50 से ऊपर हो चुकी थी, 60 के आसपास। अब गंगा में स्नान करते थे पहले प्रतिदिन, अब गंगा में स्नान बंद करवा दिया, उनके लिए समस्या आई। तो उनको धीरे धीरे पता चला कि एक सरोवर है लहर तारा नामक, और उसमें गंगा का जल ही वर्षा के दिनों में जब ओवर फ्लो होकर चलती है दरिया, उछल उछल कर लहरों के द्वारा वो जल से बहुत बड़ा सरोवर का रूप धारण कर लेता है, वो फिर सारा वर्ष बहुत अच्छा शुद्ध जल उसमें रहता है। तो वो दोनों जने प्रतिदिन वहां स्नान करके आते थे, रोटी रोजी के लिए निर्वाह के लिए उन्होंने एक सिंपल सा कारखाना लाया, यानी जिसमें कुछ भी खर्च ना हो कपड़ा बुनने के, उसमें 4-5 डंडे से गाड़ने होते हैं बस, लकड़ी के काट के जंगल से, और उसमें सूत लाकर लोगों से उनको बनाने की मजदूरी लेते थे। तो जिस कारण से वो कपड़ा बुनने के कारण जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब वो संतानहीन थे, व्यक्ति तो कुछ अपनी कर लेता है संतुष्टि, लेकिन ये बहन जो होती है इनको समाज नहीं टिकने देता, कोई ना कोई आता है पूछता है, अरे भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया, एक बालक तो चाहिए था। तो फिर वो रोती है बेचारी जिसका संतान नहीं होती। तो ऐसे ही कोई एक दिन इंजेक्शन लगा निम्मा के, शाम ने कोई बात चल गई होगी, तो सुबह उठकर वो ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए चल पड़े, और श्याम ने कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आकर उसको प्रेरित कर गया कि भगवान ने एक बालक तो देना ही चाहिए था, और बच्चे बिना तो जीव ने कुछ को ना। ऐसा हमारी अपनी सोच है, लेकिन भक्ति मार्ग में इसके विपरीत ज्ञान है, वो समय आने पर बताएंगे, अभी इतना समय नहीं। अब नीरू नीमा दोनों स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह वो चल पड़े, कहां अपने उसी स्थान पर जहां प्रतिदिन स्नान करते हैं लहर तारा तालाब पर। उधर से क्या होता है, वो परमेश्वर अपने लीला अनुसार अपने गुणानुसार सतलोक से गमन करके गति करके बिजली जैसी गति से वहां से आया, एक प्रकाश का पुंज दिखाई दिया, प्रकाश का गोला सा, और वहां पर एक प्रत्येक दृष्टा थे अष्टानंद ऋषि, वो प्रतिदिन उसी स्थान पर स्नान करने जाते थे, एकांत स्थान देखकर प्राकृतिक, वहां बैठकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से प्राप्त साधना अभ्यास करते थे। उस दिन भी वो स्नान करके साधना करने का प्रयत्न कर रहा था, उसी समय ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया, अष्टानंद महर्षि की आंखें ऊपर को हुई, देखा तो बहुत तेज था वो, आंखें बंद होगी। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें सूर्य की तरफ ज्यादा देर नहीं देख सकती, फिर आंखें बंद हो जाती है। बंद आंखों में हम क्या देखते हैं कि सूर्य के आकार का एक धीमा सा गोला सा दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है, प्रकाश रहित। तो ऐसे जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, परमात्मा के प्रकाश को, तो आंखें बंद होगी। आंखें बंद होने से उसने क्या देखा कि कोई शिशु दिखाई देता, बालक। आंखें खोली, क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के ऊपर एक कोने में सिमट गया। आगे वो अंधेरा था, देख नहीं सका। अब उसने सोचा, ये क्या देखा भगवान, अपने गुरु जी से शंका का समाधान कराऊंगा। वो तो उठकर चला गया और अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से पूछा कि हे भगवान, आज मैंने ऐसे ऐसे देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? आकाश से प्रकाश का गोला सा आया, आंखें मेरी सहन नहीं कर सकी, बंद हुई तो उसमें एक शिशु रूप दिखाई दिया, बालक का। रामानंद जी को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य की शंका का समाधान इस प्रकार किया कि बच्चा, इस तरह के ऊपर से जो प्रकाश के तारे से टूटते हैं, तो ये कोई अवतार लोग आते हैं नीचे, वो किसी माँ के गर्भ में जाएगा और वहां से फिर जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आया है। ऊपर के लोगों से कोई अच्छी आत्मा या कोई अवतार गण आते हैं तो ऐसे लक्षण होते हैं। अब अष्टानंद तो संतुष्ट हुआ क्योंकि गुरु जी जो शंका का समाधान करे वो फाइनल है। अब उधर से क्या हुआ, वो नीरू निम्मा आ रहे थे स्नान करने के लिए उसी स्थान पर, लहर तारा तालाब में। रस्ते में निमा को वो बातें याद आई जो शाम के समय किसी बहन ने उसको कोई प्रेरणा कर दी थी कि बता, बालक बिना भी कोई जीवन हो से, तो वह ज्यादा दुखी हो रही थी, रोने लगी। हे भगवान शिव जी, भले ही वो मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शिव की पूजा हृदय से वो भूल नहीं पाए थे, और कहने लगे, हे भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी है? इस दासी को भी एक कोई लाल दे देते, कोई बच्चा दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। पता नहीं क्या क्या बात बनावे हैं, मुझे देख कर छुप जाते हैं कि ये तो मनहूस आएगी, न्यू का कवार रोवे बुरी तरह। अब नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे किस्मत में होता तो भगवान शंकर हमें दे ही देते, अब आंखें खराब ना करें। देखो बच्चा हमारा कोई है नहीं, आंखें तो रो रो कर अंधी हो जाएगी, उंगली पकड़ने वाला बुढ़ापे में कोई है नहीं, तो कुछ विचार विवेक से काम ले, मत रोया कर, चुप हो जा। ऐसे कहते कहते वो लहर तारा तालाब पर आ गए। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई, नीरू स्नान करने के लिए फिर लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का डेढ़ घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व, और वो डेढ़ घंटा ऐसा होता है कि एक बार तो अंधेरा दिखेगा, फिर तुरंत ही चांदना रोशनी सी बन जाती है, नो कुछ दिखाई सा खूब दिखाई देने लग जाता है। नीमा जो वस्त्र बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए वापस किनारे पर गई तो क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर लेटे हुए थे और एक पैर को हिला रहे थे। ये अष्टानंद ऋषि सामने बैठा है, परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान है, अष्टानंद जी की आंखें खुली की खुली रह गई है, और ये आकाश से प्रकाश आने का चित्र आपने देखा। अब नीमा ने क्या देखा कि कोई सर्प तो नहीं है, कहीं मेरे पति को ना डस ले। जब ध्यान से देखा कि ये तो बालक है, अपने पति को जो साथ में स्नान कर रहा था गहरे पानी में, उसको आवाज लगाई कि जी देखना देखना, ये बालक देखना, ये बच्चा डूबेगा, जल में बच्चा डूबेगा, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा कि या तक कति मेंटल होली बच्चों के मुंह में, और देख अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे है। भगवान सद्बुद्धि दो दाता इसको। तो वो कहने लगा स्नान करता करता कि नीमा तू कति पागल होगी। तो उसने कहा कि नहीं जी देखना सचमुच, देखो देखो ये रहा बच्चा डूबेगा। अब नीरू ने देखा कि आज इसकी आवाज में कुछ सच्चाई है। जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा उसने कि सचमुच एक बालक है। तो उसने आओ देखा ना ताओ देखा, फट उठाया कमल के फूल समेत तोड़ लिया बालक को और अपनी पत्नी को दे दिया। और नीमा इस परमेश्वर को लेकर के बाहर आ गई सरोवर से। अब नीरू नहा रहा था और नीमा ने देखा उस परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर चेहरा, अपने आत्मा जिस भगवान के नाम लेते रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर के लिए भक्त भटक रहे हैं लाखों वर्षों हजारों वर्षों सैकड़ों वर्षों तक तपस्याएं कर ली, वो परमात्मा ना मिला। और उस बहन को नीमा को की गोदी में बैठा है अपने आत्मा, बर्फ तो दूर से ही ठंड कर देती है और निकट हो जाता कति गर्मी आसपास नहीं आने दे। तो संसारिक जो दुख उस भगवान की प्रेजेंस में छू मंतर हो जाते हैं, और जब ये टेंशन खत्म हो जाती है तो आत्मा अपने आप को हल्का सा महसूस करती है। तो परमात्मा की उपस्थिति में ये समाप्त हो जाते हैं। Thank you.